नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं प्रशांत कुमार। मुख्य समाचार। इसराइल ने कहा लेबनान अमेरिका और ईरान के बीच 2 सप्ताह के युद्ध विराम समझौते का हिस्सा नहीं। बेरूत में हिजबुल्ला प्रमुख कासिम के भतीजे की हत्या का दावा किया। हिजबुल्ला पर इसराइल के हमले जारी रहने पर ईरान ने कड़ा जवाब देने की चेतावनी दी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के 4 निकायों के चुनाव में बड़ी जीत हासिल की। ताइवान ने चीन के घुसपैठ के प्रयासों को सुनियोजित, योजनाबद्ध और लक्षित बताया। और एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों का 4 स्वर्ण सहित 10 पदक जीतकर दबदबा कायम। और अब समाचार विस्तार से। इसराइल रक्षा बल आईडीएफ ने बेरूत में हिजबुल्ला के महासचिव नईम कासिम के निजी सचिव अली यूसुफ हर्षी के मारे जाने की घोषणा की है। यह हमला अमेरिका और ईरान के बीच 2 सप्ताह के युद्ध विराम समझौते की घोषणा के एक दिन बाद हुआ है। आईडीएफ ने कहा कि वे आईडीएफ सैनिकों के खिलाफ हमलों की योजना बनाने में शामिल था। आईडीएफ के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीर ने कहा कि इसराइल हिजबुल्ला पर हमले जारी रखेगा। एक रिपोर्ट।
ईरान ने लेबनान पर इसराइल के हमलों की कड़ी आलोचना की है। ईरान ने कहा कि इससे युद्ध विराम की बातचीत प्रभावित हो सकती है। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने हमलों को प्रारंभिक युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन बताया। उन्होंने कहा कि लगातार आक्रामकता से बातचीत अर्थहीन हो जाएगी। इसराइली सेना ने कहा कि उसने बेरूत के पास एक हमले में हिजबुल्ला नेता नईम कासिम के एक करीबी सहयोगी को मार गिराया। दक्षिणी लेबनान में हथियार डिपो, लॉन्चर और कमांड केंद्रों को भी निशाना बनाया। यूरोपीय राजनयिकों ने लेबनान को व्यापक युद्ध विराम में शामिल करने का आह्वान किया है। इस बीच ईरान ने हॉर्मूज जल डमरू मध्य से जहाजों के पारगमन पर अपना नियंत्रण भी नहीं छोड़ा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
इस बीच भारत में इसराइल के राजदूत रुवेन अजार ने आज इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के उस बयान को दोहराया कि लेबनान अमेरिका और ईरान के बीच 2 सप्ताह के युद्ध विराम का हिस्सा नहीं है। एक समाचार एजेंसी के साथ विशेष साक्षात्कार में राजदूत ने कहा कि लेबनान की सरकार ने हिजबुल्ला को निरस्त्र करने का वादा किया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इसराइल अपनी रक्षा कर रहा है। ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर कलिकफ ने चेतावनी दी है कि लेबनान में हिजबुल्ला पर इसराइल के लगातार हमलों के गंभीर परिणाम होंगे और इसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2 सप्ताह का युद्ध विराम लेबनान पर भी लागू होता है और इसराइल तथा अमेरिका ने इसे नकार दिया है। श्री कलिकफ इस सप्ताह के अंत में पाकिस्तान में प्रस्तावित शांति वार्ता में ईरान की ओर से संभावित वार्ताकार के रूप में भाग ले सकते हैं। पश्चिम एशिया संकट पर आज नई दिल्ली में पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि पोत ग्रीन आशा एलपीजी लेकर आज नवी मुंबई पहुंच गया।
नो इंसिडेंट इन्वॉल्विंग इंडियन फ्लैग वेसल्स।
पिछले 24 घंटों में भारतीय ध्वज वाले जहाजों या भारतीय नाविकों से जुड़ी किसी भी घटना की कोई सूचना नहीं है। भारतीय ध्वज वाला एलपीजी वाहक जहाज ग्रीन आशा आज सुबह सुरक्षित रूप से जेएनपीए पहुंच गया है। इसने 5 अप्रैल को हॉर्मुज जलडमरू मध्य को पार किया था।
सेफली रीच्ड जेएनपीए अर्लियर टुडे।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार देश में घरेलू एलपीजी की 100% आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है।
एलपीजी सप्लाई प्रेजेंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में अफेक्ट हुई है और हमारे लगभग 60% ऑफ रिक्वायरमेंट है कंट्री का एलपीजी का, वो इंपोर्ट से होता है। इसके चलते डोमेस्टिक कंज्यूमर को प्रायोरिटाइज किया गया और घरेलू यूज के लिए एलपीजी की सप्लाई 100% इंश्योर की गई है। हमारे किसी भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है।
बलूचिस्तान के मस्तूंग जिले में आज एक ड्रोन हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई महिलाएं घायल हो गईं। बलूचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान की सेना कुर्दगाप इलाके में एक घर को निशाना बनाया गया। इस हमले में अब्दुल समद नाम के व्यक्ति की मौत हो गई। इस तरह के हमलों में आम नागरिकों के प्रभावित होने के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। ताइवान के राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो NSB के महानिदेशक तसाई मिंग येन ने ताइवान में घुसपैठ करने के चीन के प्रयासों को व्यवस्थित, सुनियोजित और लक्षित बताया है। उन्होंने बताया कि इन कोशिशों में सेना के मध्य स्तर के अधिकारियों से लेकर आम सैनिकों तक को निशाना बनाया जा रहा है। कल विधानमंडल की विदेश मामलों और राष्ट्रीय रक्षा समिति की बैठक में तसाई मिंग येन ने कहा कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ताइवान में जासूसी और जानकारी जुटाने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल कर रही है। बांग्लादेश के रेल मंत्री शेख रबीउल आलम ने आज संसद में बताया कि बांग्लादेश भारत से 200 ब्रॉडगेज रेलवे कोच खरीदेगा। इन कोचों की आपूर्ति इस वर्ष शुरू होकर दिसंबर 2027 तक पूरी होने की उम्मीद है। एक रिपोर्ट।
श्री आलम ने कहा कि इस परियोजना को यूरोपीय निवेश बैंक की मदद से पूरा किया जा रहा है और जून 2026 से ये कोच रेलवे में शामिल होने लगेंगे। सरकार रेलवे को आधुनिक बनाने के लिए और निवेश की योजना भी बना रही है। इसके अंतर्गत 260 और यात्री कोच, 46 ब्रॉडगेज इंजन और 50 मीटर गेज इंजन खरीदने का प्रस्ताव है। मंत्री ने बताया कि नए कोच आने से ट्रेन सेवाएं बढ़ेंगी और नए रूट शुरू करने की योजना है। उन्होंने कहा कि मांग और व्यवहार्यता के आधार पर नई परियोजनाओं के माध्यम से नेटवर्क का विस्तार करने के प्रयास जारी है। ढाका से नवल संघ परमार की रिपोर्ट के साथ विश्व दर्पण के लिए मैं विशेष शुक्ला।
विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कहा कि भारत और मॉरिशस साझेदारी से महज एक साल में उल्लेखनीय और ठोस प्रगति दिखी है। मॉरिशस में मीडिया से बातचीत में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि पिछले साल मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉरिशस यात्रा के दौरान दोनों सरकारों ने द्विपक्षीय संबंधों को उन्नत रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति जताई है। उन्होंने कहा कि ये उन्नति व्यापक प्राथमिकताओं पर सहयोग के बढ़ते दायरे और गहनता को भी दर्शाती है, जो दोनों देशों की अटूट प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। डॉक्टर जयशंकर आज सुबह मॉरिशस के पोर्ट लुइस पहुंचे, जहां वे 9वें हिंद महासागर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्रीलंका के स्वास्थ्य और जनसंचार मंत्री डॉक्टर नलिंदा जयतिस्सा ने आज भारत के विदेश मंत्रालय का दौरा किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि CDSE इंडिया और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने ई संजीवनी और भारत के मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य भंडार पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा समर्थित स्वास्थ्य कियोस्क के माध्यम से अंतिम छोर तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने की पहल को प्रस्तुत किया है। केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपनी 4 दिन की भूटान यात्रा के दौरान वहां के प्रधानमंत्री छेरिंग तोबगे से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने स्वच्छ ऊर्जा और सतत विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर बल दिया। एक रिपोर्ट।
श्री खट्टर ने भूटान के ऊर्जा मंत्री ल्योम्पो जेम शेरिंग से भी बातचीत की। इस बैठक में जल विद्युत परियोजनाओं को आगे बढ़ाने और नवीकरणीय ऊर्जा तथा क्षेत्रीय बिजली व्यापार के नए अवसरों पर चर्चा हुई। विद्युत मंत्रालय के अनुसार भारत और भूटान ने बिजली क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक बेहतर व्यवस्था बनाई है। इससे दोनों देशों की परियोजनाओं की नियमित समीक्षा और बेहतर तालमेल हो सकेगा। दोनों देशों ने पुनात सांगछू द्वितीय जल विद्युत परियोजना से जुड़े समझौतों और बिजली के आदान प्रदान की प्रक्रिया पर भी हस्ताक्षर किए। ये दौरा भारत भूटान द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ विश्व दर्पण के लिए वैष्णवी।
भारत और स्वीडन के बीच विदेश कार्यालय परामर्श की 8वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इस बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्रालय में पश्चिम मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज और स्वीडन के विदेश मामलों के मंत्री डैग हर्टेलियस ने मिलकर की। मंगोलिया में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने आज 4 स्वर्ण और 2 रजत पदक सहित 10 पदक जीते। 48 किलो वर्ग में मीनाक्षी हुड्डा, 54 किलो वर्ग में प्रीति पवार, 60 किलो वर्ग में प्रिया घणघस और अरुंधति चौधरी ने 70 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। इसराइल ने कहा लेबनान अमेरिका और ईरान के बीच 2 सप्ताह के युद्ध विराम समझौते का हिस्सा नहीं। बेरूत में हिजबुल्ला प्रमुख कासिम के भतीजे की हत्या का दावा किया। हिजबुल्ला पर इसराइल के हमले जारी रहने पर ईरान ने कड़ा जवाब देने की चेतावनी दी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के 4 निकायों के चुनाव में बड़ी जीत हासिल की। और एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों का 4 स्वर्ण सहित 10 पदक जीतकर दबदबा कायम। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।